हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दीवा और आर्यांश इस वक्त हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। नव्या ने जो भी किया था उसके बाद दीवा का दिल काफी बेचैन हो गया था। ऐसा लग रहा था कि आज तक उसने जो भी रिश्ते दिल से निभाए थे उन सब में उसको धोखा ही मिला था। पहले उसकी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त दुनिया छोड़कर चली गई थी, तो बाद में रक्षित और कनिष्का के धोखे के बाद नव्या ने जो भी किया था उसके बाद दीवा का रिश्तों पर से विश्वास उठने लगा था। आर्यांश दीवा को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। इतने लोगों से धोखा खाने के बाद दीवा को डर लग रहा था कि एक दिन आर्यांश भी उसे धोखा देकर उसे छोड़कर ना चला जाए। दीवा ने आर्यांश से यही सवाल पूछा था कि वो भी उसे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना। दीवा का सवाल सुनकर आर्यांश बिल्कुल चुप हो गया था। वो तो दीवा से बदला लेने की नीयत से ही उसके करीब आया था, ऐसा कैसे हो सकता था कि वो दीवा को धोखा ना दे। आर्यांश की चुप्पी दीवा को डरा रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने आर्यांश को दोनों हाथों से पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, आर्यांश मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तुम मुझसे शादी नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर मुझे इस तरह धोखा मत देना। जब मुझसे मन भर जाए तो बोल देना, मैं खुद चली जाऊंगी। दीवा की बातों से ही पता चल रहा था कि फिलहाल वो कितना इनसिक्योर फील कर रही है। आर्यांश ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा तुमसे कभी मन नहीं भरने वाला है। किसी दूसरे इंसान की बातों में आकर मेरे ऊपर सवाल उठाना बंद करो दीवा। आई एम रियली सॉरी आर्यांश, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, बस मैं थोड़ा डर गई थी। आर्यांश को बुरा ना लगे ये सोचकर दीवा तुरंत उससे माफी मांगने लगी। आर्यांश ने उसे अपने सीने से लगाया और सहलाते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब दीवा को थोड़ा बेटर लगने लगा तब आर्यांश उससे अलग हुआ और ड्राइव करने लगा था। पूरे रास्ते उन दोनों ने कुछ नहीं कहा था। जहां दीवा नव्या की वजह से परेशान थी तो आर्यांश दीवा के सवालों से। जब वो घर पहुंचे तब भी बिना बोले दोनों चुपचाप कमरे में चले गए थे। ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनके बीच एक अनजानी सी दूरी आ गई थी। डिनर हो जाने के बाद जब आर्यांश और दीवा बेडरूम में थे तब आर्यांश ने दीवा को अपनी बाहों में भर लिया था। हालांकि दीवा का आज रात कुछ भी करने का मूड नहीं था, पर फिर भी वो शांत थी। आर्यांश के होंठ दीवा की गर्दन पर लगे हुए थे। उसे किस करते हुए अचानक वो रुका और धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी नव्या से ज्यादा कियाना की वजह से है। ऊपर से मेरी फैमिली में उसका इन्फ्लुएंस भी काफी अच्छा है। मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी और उन्हें देखकर यही लग रहा था कि वो मुझे पसंद करती हैं। क्या तुम्हारे डैड हमारे रिश्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं? दीवा ने आर्यांश की तरफ पलटते हुए परेशान स्वर में पूछा। उसके दोनों हाथ आर्यांश के कंधे पर लगे हुए थे। मेरे मॉम डैड वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे दादाजी और कियाना के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे परिवारों के बीच ये दोस्ती का रिश्ता काफ़ी पीढ़ियों से चला आ रहा है। वो कियाना को बहुत पसंद करते हैं और उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं और कियाना शादी करें। बस यही वजह है कि कियाना ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और उसे कोई रोक भी नहीं पा रहा। उसे दादाजी की शह मिली हुई है। आर्यांश ने पहली बार दीवा को अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया था। तो क्या तुम्हें सच में उनकी बात मानते हुए उससे शादी करनी पड़ेगी? दीवा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अब दीवा को समझ आ गया था कि कियाना खुद को बार बार कपूर फैमिली की बहू क्यों बताती थी और उसने ये क्यों कहा था कि आर्यांश चाहे कितनी भी लड़कियों से रिश्ता क्यों ना रख ले, लेकिन आखिर में उसे उसी के पास आना पड़ेगा और उससे ही शादी करनी होगी। कियाना के इस कॉन्फिडेंस के पीछे आर्यांश के दादाजी थे। आर्यांश ने तुरंत नामे सहलाया और कहा, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे कुछ नहीं करवा सकता है। मैं वैसे भी कियाना से कभी शादी नहीं करना चाहता था और ऊपर से अब तो तुम मेरी लाइफ में आ गई हो। कुछ दिनों पहले मेरी मॉम से बर्थडे पार्टी में जाने को लेकर बात हुई थी। तब मैंने यही सोचा था कि मैं दादाजी को कियाना से शादी करने से मना कर दूं, लेकिन अब मैंने कुछ और सोचा है। और वो क्या? दीवा ने पूछा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने नव्या से बात की थी और उसे यही कहा था कि वो पहले की तरह कियाना के लिए काम करे और उसे भनक तक नहीं होने दे कि हम उसका सच जान चुके हैं। थोड़े दिनों बाद मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी है। मैं बस वहीं पर कियाना को एक्सपोज करना चाहता हूँ। कियाना की सच्चाई उनके सामने आएगी तभी वो मुझे आगे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, वरना मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझे इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। आर्यांश ने दीवा को अपना सारा प्लान बता दिया था। अब कहीं ना कहीं दीवा को भी तसल्ली हो गई थी कि आर्यांश उसी के साथ रहेगा। उसका मूड थोड़ा सही हो गया था। उसने आर्यांश की आंखों में देखा और फिर अपने होंठ आर्यांश के होठों पर रख दिए थे। आर्यांश बहुत इंटेंसिटी से दीवा को किस कर रहा था। वैसे भी वे काफी वक्त बाद एक दूसरे के क्लोज आए थे। अगले कुछ ही मिनट में वे दोनों बेड पर थे। हालांकि पिछली बार आर्यांश ने दीवा को प्रॉमिस किया था कि अगली बार जब भी वे इंटीमेट होंगे तब वो प्रिकॉशन यूज करेगा। लेकिन दीवा के करीब आने की जल्दबाजी में वो भूल गया था। दीवा का आज का दिन बहुत बुरा था, लेकिन आर्यांश के करीबी ने उसे सब कुछ भुला दिया था। अब वो वक्त दूर नहीं रहा था जब आर्यांश के दादाजी का बर्थडे आने वाला था। सौरभ बजाज अपने बेटे प्रियंक के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ था। क्या तुम अपने प्लान को लेकर श्योर हो? अगर कियाना और दीवा दोनों ही आर्यांश के दादाजी के सामने गईं, तो आर्यांश किसे चुनेगा? अगर उसने अपने दादाजी की बात नहीं मानी तो वो अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे। ऐसे में कपूर इंटरनेशनल के शेयर्स भी नीचे आ जाएंगे और आर्यांश को काफी नुकसान होगा, सौरभ ने प्रियंक की तरफ देखकर गंभीर आवाज में पूछा। आर्यांश बहुत शातिर है डैड, मुझे नहीं लगता कि वो दीवा को अपने साथ बर्थडे पार्टी में लेकर भी जाएगा। मुझे कैसे भी करके दीवा से बात करनी होगी ताकि वो मेरे साथ जाने के लिए मान जाए, प्रियंक ने जवाब दिया। प्रियंक ने यही प्लान किया था कि आर्यांश के दादाजी के बर्थडे पार्टी के दिन वो दीवा और कियाना दोनों को उसके दादाजी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ऐसे में अगर आर्यांश के सामने उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करने को कहा जाएगा, अगर आर्यांश सच में दीवा से प्यार करता होगा तो वो उसे सिलेक्ट करेगा, पर ऐसी स्थिति में उसके दादाजी उससे नाराज हो जाएंगे और साथ ही कपूर इंटरनेशनल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर अपना फायदा सोचकर आर्यांश ने कियाना को सिलेक्ट किया तो दीवा का दिल टूट जाएगा और असली चेहरा उसके सामने आ जाएगा। तुम्हारा प्लान वाकई अच्छा है, पर इसके लिए जरूरी है कि अगर आर्यांश दीवा को अपने साथ लेकर नहीं जाए तो दीवा तुम्हारे साथ जाने को मान जाए। मुझे नहीं लगता वो लड़की आर्यांश के खिलाफ जाकर कुछ करेगी, सौरभ बोला। डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा, बाद में मिलते हैं डैड, प्रियंक ने जवाब दिया और उठकर चला गया था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर थे। इस प्लान के अलावा भी उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। अपने कमरे में जाकर प्रियंक ने अंदर से दरवाजा बंद किया। उसने अपना मोबाइल निकालकर कुछ मैसेज पढ़े और फिर मोबाइल साइड में रखकर आराम से बेड पर लेट गया था। प्रियंक की आंखें बंद थीं।
तुम दीवा को धोखा दे रहे हो आर्यांश, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम उससे बदला लेने के लिए उसके करीब आए हो। अगर तुमने पार्टी में सबके सामने दीवा को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन अगर तुमने दीवा को धोखा देकर उसे सबके सामने बेइज्जत किया तो मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। ना तुम ठीक से अपने पहले प्यार के हो पाए और ना ही दूसरे को निभाने लायक बने, प्रियंक ने सर्दावाज में कहा। प्रियंक के पास आर्यांश के पहले प्यार की उन तस्वीरों का होना जो उसने कभी भी नहीं देखी थी, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, कुछ तो ऐसा था जिसके बारे में आर्यांश ने कल्पना तक नहीं की थी, और प्रियंक काफी कुछ सोचकर बैठा था। अगली सुबह हमेशा की तरह आर्यांश ऑफिस चला गया था। उसने दीवा को कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने के लिए भेज दिया था। वो अच्छे से जानता था कि कियाना की नज़रें उस पर हैं, ऐसे में दीवा और आर्यांश का साथ दिखाना सही नहीं था। जब तक आर्यांश के दादाजी की बर्थडे पार्टी नहीं हो जाती तब तक दीवा अपने ही घर पर रहने वाली थी। आखिरी बार दीवा को आर्यांश के घर से अपने सामान के साथ बाहर निकलते हुए देखा गया था और उसके कुछ फोटोज भी क्लिक की गई थीं। वहीं तस्वीरों को कियाना हर्षाली को दिखा रही थी। उसने खुश होकर कहा, ये सब आप ही की वजह से हो पाया है, अगर आपने मुझे गाइड नहीं किया होता तो मैं उस लड़की को कभी हायर नहीं कर पाती और ना ही मुझे दीवा और आर्यांश के रिश्ते के बीच की खटपट का पता चलता। इतनी जल्दी खुश होना बेवकूफ़ी है, उस लड़की को कहो कि अभी भी दीवा पर नज़र रखे, ऐसी लड़कियाँ इतनी आसानी से अमीर लड़कों को छोड़ती नहीं हैं, उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा पैसे मायने रखते हैं। उस लड़की को आर्यांश के साथ लग्जीरियस लाइफ बिताने की आदत पड़ गई है, अब वो उससे बात करने के लिए दोबारा ज़रूर जाएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी, हर्षाली ने कियाना को समझाया। बस कुछ दिनों की बात है, अगले हफ्ते आर्यांश के दादाजी का बर्थडे है और मैं दादाजी से कह दूंगी कि वहां मेरी और आर्यांश की सगाई ऑफिशियल कर दें। एक बार शहर और बाकी जगह मेरी और आर्यांश की सगाई की खबर फैल जाएगी तो फिर दीवा दूसरी औरत बन जाएगी। उस जैसी लड़कियों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है मॉम, मैंने उसे परखा है, फिर वो कभी आर्यांश के सामने नहीं आ पाएगी, कियाना बोली। हर्षाली ने उसकी बात पर सहमति जताई। कियाना को बस कुछ भी करके एक हफ्ते तक आर्यांश और दीवा को दूर रखना था। इसके लिए वो हमेशा की तरह अच्छे से तैयार होकर आर्यांश के पास कपूर इंटरनेशनल पहुंची। इस बात से अनजान कि आर्यांश उसकी सच्चाई पहले ही जान चुका है और ऑलरेडी एक प्लान के साथ उसी के आने का इंतजार कर रहा था।